एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही मशहूर अमेरिकी उपन्यास की गहराइयों में उतरने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसी किताब जिसने समय के साथ अपनी पहचान बनाई है।
बिल्कुल, निथेनियल हॉथोर्न का द स्कारलेट लेटर।
जी,
हॉथोर्न 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण लेखक थे, अमेरिकी रोमांटिक आंदोलन से जुड़े हुए, खास तौर पर जिसे डार्क रोमांटिसिज्म कहते हैं।
हाँ, मतलब वो इंसानी मन के अंधेरे कोनों को ज्यादा देखते थे, पाप, अपराध बोध, समाज की सख्ती, इन सब पर।
और कहते हैं कि इसकी एक वजह शायद उनके परिवार के इतिहास से भी जुड़ी है। उनके एक पूर्वज वो सेलम विच ट्रायल में जज थे।
हाँ बिल्कुल, और माना जाता है कि उस अपराध बोध का साया हॉथोर्न के लेखन पर दिखता है बहुत साफ।
अच्छा,
और ये उपन्यास द स्कारलेट लेटर 1850 में आया। ये हमें सीधे ले जाता है 17वीं सदी के बोस्टन में।
वो भी प्यूरिटन बोस्टन।
हाँ, मतलब एक ऐसा समाज जहाँ धर्म ही सब कुछ था, बहुत सख्त नियम कानून थे, हर चीज पर समाज की नजर।
कल्पना करना भी मुश्किल है।
बिल्कुल,
और इसी माहौल में हॉथोर्न ने बुनी है हिस्टप्रिन, आर्थर डिम्सडेल और रॉजर चिलिंगवर्थ की कहानी। तो आज हम इसी कहानी के, क्या कहते हैं, ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। किरदारों के अंदरूनी संघर्ष, समाज का दबाव और पाप, राज, माफी जैसे जो गहरे सवाल हैं उनको टटोलेंगे।
हाँ चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही बड़ी दमदार है।
बिल्कुल, उस बदनाम मचान से शुरू करते हैं।
हाँ, तो कहानी खुलती है एक बहुत ही तनाव भरे सीन से। बोस्टन शहर के बीचों बीच एक लकड़ी का ऊंचा मचान है, स्कैफोल्ड जिसे कहते हैं। भीड़ लगी हुई है, जेल का दरवाजा खुलता है और एक जवान औरत हेस्टप्रिन बाहर आती है, गोद में एक नन्ही सी बच्ची है।
और उसके सीने पर वो अक्षर।
हाँ, उसके कपड़ों पर, सीने पर मोटे धागे से कढ़ा हुआ एक बड़ा सा लाल अक्षर ए, अडल्ट्री यानी व्यभिचार का निशान। ये सजा है कि उसे जिंदगी भर ये पहनना है।
सबके सामने,
सार्वजनिक अपमान।
बिल्कुल,
शहर के बड़े लोग, गवर्नर, पादरी, सब वहीं हैं, सब उसे देख रहे हैं।
उनमें एक युवा पादरी भी है, आर्थर डिम्सडेल, बहुत इज्जत है उसकी शहर में,
और सब उस पर दबाव डाल रहे हैं।
हाँ,
कि वो बच्ची के पिता का नाम बताए। लेकिन हेस्टर गजब की हिम्मत दिखाती है। वो एकदम शांत खड़ी रहती है, सिर उठाए हुए,
और नाम नहीं बताती।
नहीं, साफ इनकार कर देती है, जैसे कह रही हो कि ये बोझ वो अकेले ही उठाएगी, अपने साथी को बचा लेगी।
कमाल है।
इसी भीड़ में अचानक उसकी नजर एक अजीब से दिखने वाले आदमी पर पड़ती है। थोड़ा उम्रदराज, कंधे झुके हुए, चेहरे पर अजीब सी कड़वाहट,
और हेस्टर से पहचान लेती है।
हाँ, वो उसका पति है जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। सालों से लापता था वो।
अरे,
वो आदमी इशारे से हेस्टर को चुप रहने को कहता है।
तो यहीं से राज और गहरा हो गया।
बिल्कुल, बाद में वो आदमी, जो अब अपना नाम रॉजर चिलिंगवर्थ बताता है, हेस्टर से जेल में मिलता है,
एक डॉक्टर के भेष में शायद।
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो हेस्टर से वादा लेता है कि वो उसकी असली पहचान किसी को नहीं बताएगी, और वो कसम खाता है
कि वो उस गुमनाम प्रेमी को ढूंढेगा।
हाँ, और उससे बदला लेगा। सोचिए, एक राज उसके ऊपर एक और राज, और फिर बदले की भावना।
यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है।
हाँ, अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पर्ल का पिता कौन है, बल्कि ये है कि इस एक छुपे हुए पाप का असर इन तीन लोगों की जिंदगियों पर कैसा पड़ता है।
हेस्टर, जिससे समाज ने बहिष्कृत कर दिया है,
उसका प्रेमी जो राज के बोझ तले घुट रहा है,
और उसका पति चिलिंगवर्थ जो अब सिर्फ बदला चाहता है। हॉथोर्न यही वो बड़ा सवाल उठाते हैं, असली सजा क्या है, समाज का बहिष्कार या अंदर का अपराध बोध।
हाँ, वो अपराध बोध जो आत्मा को धीरे धीरे खाता रहता है।
उपन्यास अगले 7 साल तक इन्हीं किरदारों के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव को दिखाता है,
है ना। बिल्कुल, और इसमें हिस्टर का जो सफल है,
हाँ,
वो खास तौर पर देखने लायक है।
है, उसके बारे में बात करते हैं। शुरू में तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा।
बहुत ज्यादा, सब उसे नफरत से देखते हैं, तिरस्कार करते हैं। उसे और उसकी बेटी पर्ल को शहर के किनारे एक अलग थलग झोपड़ी में रहना पड़ता है।
लेकिन वो हार नहीं मानती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपने कढ़ाई की कला से गुजारा करती है, और उसका काम इतना अच्छा होता है कि अमीर लोग भी उससे काम करवाते हैं।
अच्छा,
सिवाय शादी के जोड़ों के शायद।
हाँ।
और धीरे धीरे वो बीमारों की, गरीबों की मदद भी करने लगती है
अपनी क्षमता के अनुसार।
और यही वो बदलाव आता है उस अक्षर ए के मायने में।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो अक्षर ए जो शुरू में एडल्ट्री का प्रतीक था, शर्म का निशान था, लोगों की नजर में धीरे धीरे बदलने लगता है।
कैसे?
कुछ लोग उसे एबल यानी सक्षम मानने लगते हैं, क्योंकि वो इतनी मुश्किलों के बावजूद कितनी काबिलियत से जी रही है, दूसरों की मदद कर रही है।
हाँ, कुछ तो उसे एंजल यानी देवदूत की तरह भी देखने लगते हैं।
वाह, मतलब उसने समाज के दिए कलंक को एक तरह से अपनी शर्तों पर बदल दिया।
बिल्कुल, जैसे उसने उस सजा को अपने लिए फिर से परिभाषित कर दिया हो। वो समाज से माफी नहीं मांग रही,
वो अपनी अंदरूनी ताकत से सम्मान पा रही है।
हाँ, हॉथॉर्न ने लिखा भी है, द स्कारलेट लेटर हैड नॉट डन इट्स ऑफिस, मतलब उस अक्षर ने अपना काम नहीं किया।
उसका मकसद तो हेस्टर को कुचलना था,
पर उसने तो उसे और मजबूत, ज्यादा दयालु, ज्यादा स्वतंत्र सोच वाला बना दिया। ये प्यूरिटन सजा की हार है और हेस्टर की आत्मा की जीत।
ये तो हेस्टर की हिम्मत की कहानी हुई, लेकिन दूसरा पहलू रेवरेंड डिब्सडेल का, वो बहुत दुखद है।
हाँ, बहुत। वो शहर का सबसे इज्जतदार पादरी है, लोग उसे संत मानते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर
वो खोखला हो रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि वही है पर्ल का पिता, हेस्टर का प्रेमी, और ये राज उसे खाए जा रहा है।
हेस्टर का पाप तो सबके सामने है, उसे समाज की सजा मिली, लेकिन डिम्सडेल का पाप छुपा हुआ है,
और शायद इसीलिए वो ज्यादा जहरीला है। वो लोगों के सामने नेक होने का नाटक करता है, पर अकेले में खुद को तकलीफ देता है।
कहते हैं वो खुद को कोड़े मारता था, रात भर जागता था।
हाँ, ऐसा उपन्यास में संकेत है। उसकी सेहत लगातार गिरती जाती है, वो अक्सर अनजाने में अपना हाथ अपने दिल पर रख लेता है।
जैसे वहां कोई बोझ हो, कोई दर्द हो।
हाँ, ये पाखंड का बोझ है, वो दोहरा जीवन जी रहा है।
हॉथॉर्न का वो वाक्य याद आता है, नो मैन कैन वेयर वन फेस टू हिमसेल्फ एंड अनदर टू द मल्टीट्यूड
विदाउट फाइनली गेटिंग बिविल्डर्ड एज टू विच मे बी द ट्रू।
हाँ, मतलब लंबे समय तक दो चेहरे रखकर जीना मुमकिन नहीं, इंसान खुद ही भूल जाता है कि असली कौन है।
डिम्सडेल की यही त्रासदी है, संत और पापी दोनों किरदार निभाते निभाते वो अपनी पहचान ही खो बैठा है।
और उसकी इस पीड़ा को बढ़ाने के लिए आ जाता है रॉजर चिलिंगवर्थ,
हेस्टर का पति। हाँ, वो शहर में एक काबिल डॉक्टर के तौर पर अपनी जगह बना लेता है, और जब डिम्सडेल की सेहत बिगड़ती है
तो चिलिंगवर्थ उसका डॉक्टर बन जाता है।
हाँ, उसका दोस्त उसका डॉक्टर बनकर उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है।
और ये कितना खतरनाक है, क्योंकि चिलिंगवर्थ का इरादा तो कुछ और है।
वो बहुत शातिर है, वो समझ जाता है कि डिम्सडेल की बीमारी जिस्मानी कम रूहानी ज्यादा है। उसे शक हो जाता है कि यही है वो आदमी जिसकी उसे तलाश थी,
और फिर वो अपना खेल शुरू करता है।
हाँ, मनोवैज्ञानिक यातना, वो डॉक्टर बनकर डिम्सडेल की आत्मा के घावों को खुरेदता है, उसके अपराध बोध को और बढ़ाता है, उसे अंदर ही अंदर तड़पाता है।
ये तो शैतानी रूप है उसका।
बिल्कुल, चिलिंगवर्थ का किरदार यही दिखाता है कि बदला लेने की आग इंसान को कैसे बदल सकती है। वो पहले एक विद्वान था, पर अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, डिम्सडेल को धीरे धीरे तबाह करना।
जैसे वो डिम्सडेल के दर्द पर ही जी रहा हो।
हाँ, एक परजीवी के तरह उसके अपनी इंसानियत ही जैसे खत्म हो गई है। ये दिखाता है कि नफरत पालने वाला अक्सर खुद ही सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है।
इन तीनों के बीच एक और बहुत अहम किरदार है पर्ल।
हाँ, हेस्टर की बेटी। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो जैसे उस स्कारलेट लेटर का जीता जागता रूप है।
बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ अजीब सी, जंगली सी।
हाँ, उसे समझना मुश्किल है, वो समाज के नियमों में बंधी भी नहीं लगती। लोग उसे एल्फ चाइल्ड कहते हैं, जैसे कोई परी या कोई और दुनिया की बच्ची हो।
उसमें खास तरह की समझ होती है ना,
बहुत गहरी। वो उन बातों को भी भांप लेती है जो बड़े लोग छुपा रहे हैं। वो अपनी माँ से उस ए अक्षर के बारे में सवाल पूछती रहती है,
और डिम्सडेल से भी।
हाँ, वो डिम्सडेल से पूछती है कि वो अपना हाथ दिल पर क्यों रखता है। वो जैसे लगातार सच्चाई की तरफ इशारा करती है जिसे कोई देखना नहीं चाहता।
तो वो प्रकृति और सच्चाई का प्रतीक है, प्यूटन समाज की बनावट के खिलाफ।
हाँ, बिल्कुल। और कहानी में ये दिखाया गया है कि वो तब तक पूरी तरह से मानवीय भावनाओं से नहीं जुड़ पाती जब तक कि उसका पिता उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर लेता।
कहानी में वो आधी रात वाला सीन, हाँ, मचान पर, वो बहुत शक्तिशाली लगता है।
हाँ, बहुत। अपराध बोध से हारा हुआ डिम्सडेल उसी मचान पर चढ़ जाता है जहाँ हेस्टर को अपमानित किया गया था, अंधेरे में।
और तभी वहाँ हेस्टर और पर्ल भी आ जाते हैं।
हाँ, वो तीनों मचान पर हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, और उसी वक्त आसमान में एक उल्का पिंड ए अक्षर बनाता हुआ गुजरता है,
जैसे कुदरत भी गवाही दे रही हो।
और तभी उन्हें नीचे अंधेरे में चिलिंगवर्थ दिखाई देता है। डिम्सडेल समझ जाता है कि ये आदमी उसका दुश्मन है।
7 साल बीत जाते हैं।
हाँ, और हेस्टर देखती है कि डिम्सडेल की हालत बहुत बिगड़ रही है, वो चिलिंगवर्थ के जाल में फंसता जा रहा है।
तब वो फैसला करती है कि अब चुप नहीं रहना है।
हाँ, वो डिम्सडेल से जंगल में मिलती है, जंगल जो शहर के नियमों से दूर है।
प्रकृति की गोद, आजादी और सच्चाई की जगह।
बिल्कुल, शहर यानी समाज, नियम पाखंड, जंगल यानी आजादी, भावनाएं, सच्चाई। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत अहम है उपन्यास में।
वहीं जंगल में हेस्टर उसे सच बताती है।
हाँ, कि चिलिंगवर्थ कौन है। डिम्सडेल ये सुन के टूट जाता है, लेकिन हेस्टर उसे हिम्मत देती है। वो उसे मनाती है कि वे पर्ल के साथ यहाँ से भाग जाएं, यूरोप चले जाएं, नई जिंदगी शुरू करें।
एक उम्मीद जगती है।
हाँ, उस पल में हेस्टर इतनी उत्साहित होती है कि वो अपने सीने से वो स्कारलेट लेटर उतार के फेंक देती है, अपने बाल खोल देती है। एक पल के लिए लगता है जैसे वो आजाद हो गई।
लेकिन
तभी पर्ल आती है और वो अपनी माँ को बिना उस अक्षर के पहचानने से इनकार कर देती है। वो इशारे से कहती है कि माँ वो अक्षर वापस पहन ले।
अरे,
हेस्टर को बहुत दुख के साथ वो निशान फिर से पहनना पड़ता है, जैसे ये उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है जिसे वो छोड़ नहीं सकती, या शायद किस्मत उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देगी।
तो वो भागने का प्लान कामयाब नहीं होता।
आकर उठते हैं, उसकी इज्जत और बढ़ जाती है,
लेकिन उसके अंदर का तूफान शायद और तेज हो गया है।
हाँ, चर्च से बाहर निकलते हुए जुलूस में वो हेस्टर और पर्ल को मचान के पास खड़ा दिखता है और अचानक वो भीड़ से मुड़ता है
मचान की तरफ।
हाँ, लड़खड़ाते हुए कदमों से वो हेस्टर और पर्ल को अपने पास बुलाता है। सब हैरान हैं।
और फिर वो मचान पर चढ़ जाता है।
हाँ, उसी मचान पर, और सबके सामने, पूरी भीड़ के सामने वो कबूल करता है
अपना पाप।
हाँ, कि पर्ल का पिता वही है, असली पापी वही है।
ये उसकी आखिरी शक्ति थी।
बिल्कुल, कहते हैं उसने अपने कपड़े फाड़कर अपनी छाती दिखाई जहाँ शायद एक ए अक्षर बना हुआ था, अपराध बोध का निशान।
और फिर
पर्ल उसे चूमती है, शायद पहली बार उसकी आंखों से सच्चे आंसू बहते हैं, वो मानवीय भावनाओं से जुड़ती है, और उसी पल डिम्सडेल हेस्टर की बाहों में दम तोड़ देता है।
उसे मुक्ति मिल गई, मौत में ही सही।
हाँ, रास के बोझ से आजादी।
और चिलिंगवर्थ का क्या हुआ?
डिम्सडेल की मौत के बाद उसका तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। वो 1 साल के अंदर मर गया और अपनी सारी दौलत पर्ल के नाम कर गया।
हेस्टर और पर्ल चले गए बोस्टन से।
हाँ, वे चले गए, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती।
अच्छा,
कई साल बाद हेस्टर अकेली बोस्टन लौट आती है, बूढ़ी हो चुकी है। वो फिर से उसी झोपड़ी में रहती है और अपनी मर्जी से वो स्कारलेट लेटर फिर से पहन लेती है।
लेकिन अब उसका मतलब बदल चुका है।
हाँ, अब वो शर्म का नहीं बल्कि अनुभव, ज्ञान और सहानुभूति का प्रतीक है। दूसरी औरतें जिनके जीवन में दुख है, कोई राज है, वो सलाह के लिए हेस्टर के पास आती हैं।
और मरने के बाद
उसे डिम्सडेल की कब्र के पास ही दफनाया जाता है, लेकिन थोड़ी दूरी पर उनकी साझा कब्र पर एक पत्थर लगा है जिस पर हेराल्ड्री की भाषा में लिखा है, ऑन अ फील्ड सेबल द लेटर ए ग्यूल्स।
काली जमीन पर लाल अक्षर ए।
हाँ, शर्म का निशान अब इतिहास का हिस्सा बन गया है, एक यादगार चिन्ह।
ये कहानी वाकई बहुत सी परतों वाली है, कई सवाल छोड़ जाती है।
हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो वही है, छुपा हुआ पाप ज्यादा नुकसान करता है या जाहिर हो चुका पाप।
डिम्सडेल का हश्र तो यही दिखाता है कि राज और पाखंड आत्मा को धीरे धीरे मार देते हैं।
और हेस्टर का सफर दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद, समाज के बहिष्कार के बावजूद, इंसान अपनी गरिमा वापस पा सकता है, अपनी पहचान बना सकता है।
वो ए अक्षर को अपनी ताकत बना लेती है। ये व्यक्तिगत विद्रोह की कहानी भी है।
बिल्कुल, और चिलिंगवर्थ, वो दिखाता है कि बदला लेने की भावना कितनी विनाशकारी होती है, बदला लेने वाला खुद ही तबाह हो जाता है।
कथा शैली भी बहुत अनोखी है, हॉथॉर्न जैसे किरदारों के मन में उतर जाते हैं।
हाँ, और प्रतीकों का इस्तेमाल, वो लाल अक्षर, ए, पर्ल खुद, मचान, जंगल, शहर, ये सब कहानी को बहुत गहरा बनाते हैं।
ये उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, सीधी लकीरें नहीं खींचता।
नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि इंसान कितना जटिल होता है, अच्छाई बुराई का मिश्रण, नैतिकता के कई शेड्स होते हैं।
शायद सच्ची मुक्ति समाज की माफी में नहीं है।
हाँ, शायद सच्ची मुक्ति सच्चाई को स्वीकार करने में है, खुद को स्वीकार करने में, आत्म स्वीकृति में।
और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल, समाज का दबाव, छुपे हुए राज, सही गलत के सवाल, ये तो आज भी हैं।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर किसी के दिल में अपनी कहानियां, अपने राज होते हैं। हमें शायद थोड़ी ज्यादा सहानुभूति दिखानी चाहिए।
हाँ
बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है।
और ये भी कि नैतिकता कितनी उलझी हुई हो सकती है। पाप और पुण्य, शर्म और सम्मान के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।